ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन के वार्ड समिति के चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के नियमों के बराबर बनाने के लिए विधानसभा के नियमों और कार्य प्रणालियों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज नरेला स्थित राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर जमीनी स्तर पर जरूरी सुधारों के लिए दिशा निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी इलाके से अवैध रूप से रह रहे 16 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने आज कनॉट प्लेस में कचरे को कम करने, पुनः उपयोग करने और रिसाइकिल करने को बढ़ावा देने के लिए रिसाइकिल मेला शुरू किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन के वार्ड समिति के चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 में से 8 जोन में वार्ड समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। इस बीच दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न एजेंसियों के बीच लगातार टकराव होता रहा, लेकिन अब जब राज्य और नगर निगम में भाजपा की सरकार है तो दोनों एजेंसियां बिना किसी टकराव के समन्वय से काम कर रही हैं।
पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी की सरकार थी, सभी एजेंसी में आपस में टकराव रहता था। अब स्टेट के अंदर हमारी अपनी सरकार आ गई है, निगम में भी हम आ गए हैं, तो अब दोनों जो एजेंसीज हैं मिलकर काम कर रही हैं, किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। आप देखिए कि हमारी जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमेशा आपको रोड्स के ऊपर नजर आएंगी। डी सिल्टिंग करते हुए हमारे मिनिस्टर्स नजर आते हैं, सभी जो निगम पार्षद हैं सफाई करते हुए नजर आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और किसी भी तरह का वाटर लोगों की समस्या नहीं होगी।
शाहदरा दक्षिण जोन के नवनियुक्त अध्यक्ष राम किशोर ने अपनी जीत के बाद कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से राजधानी बारिश के मौसम में जलभराव से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार तभी सार्थक होगी जब हम दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।
हम जब से सत्ता में आए हैं नगर निगम में तब से हमारी सभी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन शाहदरा साउथ जोन की तैयारी अब मुझे विशेष रूप से चेयरमैन के नाते उस पर ध्यान देना पड़ेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार तभी दिल्ली में सार्थक होगी जब हम दिल्ली वासियों के आसों पर खरे उतरेंगे। हम सभी नालों की सफाइयां हो जाएं, समय समय पर सारी तैयारियां हो जाएं, इस पर हमें ध्यान देना है।
वहीं शाहदरा दक्षिण जोन के नवनियुक्त उपाध्यक्ष राजू सचदेवा ने पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद दिया और कहा कि हम मॉनसून की तैयारी के लिए अपने पार्षदों के साथ सभी वार्डों का निरीक्षण करेंगे।
हमारे पास 26 वार्ड हैं हमारे शाहदरा साउथ जोन में, हमारे सभी निगम पार्षदों के साथ मिलकर हम पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे। मानसून अभी आ रहा है तो उसके लिए हम अपने वार्ड में सभी पार्षदों को लेकर निरीक्षण कर उसके समस्या का समाधान करेंगे।
दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली नगर निगम के जोनल चुनावों और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार के गठन की प्रक्रिया अब पूरी हो रही है। श्री बिधूड़ी ने कहा कि साउथ जोन में भाजपा का बहुमत न होने के बावजूद पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि लोकसभा राज्यसभा के नियमों के बराबर बनाने के लिए विधानसभा के नियमों और कार्य प्रणालियों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि सदन की कार्यवाही में ज्यादा पारदर्शिता लाने और विसंगतियों को दूर करने के लिए दिल्ली विधानसभा की नियम पुस्तिका में सदन के दोनों सदनों की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का समावेशन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नियम समिति की बैठक 5 जून को होगी।
श्री गुप्ता ने कहा कि विधानसभा की नियम पुस्तिका को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 जून को दिल्ली विधानसभा के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 100 दिनों में दिल्ली विधानसभा में विकास और विरासत की दिशा में काम हुआ और ये पहल नई विधानसभा के गठन के 100 दिन के एजेंडे का हिस्सा है।
दिल्ली की विधानसभा का एक अपना इतिहास है, तो उस इतिहास को एक बार लोगों के समक्ष रखना, ई डिजिटल लाइब्रेरी, हमने ये फैसला लिया है। रूल बुक में भी नई कमेटीज हमने बनाई है। रूल बुक को भी पार्लियामेंट के एट पार लाने का निर्णय लिया गया है और इसी के साथ साथ सीएजी की रिपोर्ट्स इन 100 दिन के अंदर अंदर पेश की गई है और ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम भी देश की पहली असेंबली होगी जहां पर एपीएमएस जो है सीएजी की रिपोर्ट्स को फास्ट ट्रैक पर स्क्रूटनी करने के लिए वो लागू किया गया है।
इससे पहले सरकार ने विधानसभा को पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनाने की दिशा में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। वहीं विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए भारत सरकार की मदद से नेवा को प्रयोग किया गया जिसके बाद अगला मानसून सत्र पेपरलेस होगा। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के इतिहास को संरक्षित करने के लिए सरकार ने ई डिजिटल पुस्तकालय बनाने का भी फैसला लिया है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पहली बार तेलंगाना स्थापना दिवस को सांस्कृतिक समारोह के साथ दिल्ली सचिवालय में मनाया। कला संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस राज्य के संघर्ष और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित किया। इस आयोजन में साहित्य कला परिषद के लगभग 10 कलाकारों ने तेलंगाना की परंपराओं को जीवंत किया। कार्यक्रम में लंबाड़ी आदि लोकप्रिय लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं जिसने उपस्थित लोगों को राज्य की ऐतिहासिक और कलात्मक विरासत से जोड़ा। ये समारोह दिल्ली और तेलंगाना के बीच सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने का प्रतीक बना। इस अवसर पर कला संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि तेलंगाना न केवल सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है बल्कि आर्थिक प्रगति में भी अग्रणी है। उन्होंने कहा कि आज हम एक राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता के उस भाव का उत्सव मना रहे हैं जो हमें परिभाषित करता है। श्री मिश्र ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले तेलंगाना के लोग अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से दोनों राज्यों देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग जल और सिंचाई मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि अब दिल्ली में सरकारों के बीच टकराव और दोषारोपण का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के चलते सभी विभाग अपने समन्वय से काम कर रहे हैं और इसका असर जनता तक सीधे पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा अब तक दिल्ली के बड़े नालों से लगभग 15 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई के साथ साथ नालों पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है ताकि बारिश के दौरान पानी का बहाव बाधित न हो। उन्होंने कहा कि इस कार्य की गति बढ़ाने के लिए विभाग में 156 नई पोस्ट की स्वीकृति की गई है। श्री सिंह ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कों और ड्रेनों के रखरखाव के लिए नए समग्र टेंडर सिस्टम की शुरुआत की है। इसमें 35 पैकेजों में ड्रेन की सफाई, हर पैकेज के लिए अलग अलग टेंडर, 35% काम पूर्ण, शेष के लिए 15 जून की डेडलाइन तय। अब तक 100 किलोमीटर सड़कें रीसर्फेस, 2500 नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, 90% डार्क स्पॉट दुरुस्त किए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने नरेला स्थित राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज निरीक्षण किया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध खेल सुविधाओं का जायजा लिया और जमीनी स्तर पर जरूरी सुविधाओं के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में युवाओं की खेल के प्रति गहरी रुचि को देखते हुए सरकार जल्द ही आधुनिक संसाधनों और सुविधाओं का विस्तार करेंगे ताकि हर युवा को अपने खेल कौशल को निखारने और आगे बढ़ाने का समान अवसर मिल सके। इस बीच श्री सूद ने नरेला क्षेत्र के बांकनेर गांव का दौरा किया। ग्रामीणों की शिकायत और सुझाव को देखते हुए शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया कि वो बांकनेर में प्रस्तावित स्कूल की जगह को रद्द करे। उन्होंने शिक्षा निदेशक को आसपास का कोई उपयुक्त स्थान विद्यालय बनाने के लिए तलाश करने को कहा और एक सप्ताह में सारी कार्यवाही को अवगत कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के विमानन क्षेत्र के वैश्विक हवाई परिवहन उद्योग में प्रमुख भूमिका है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है।
आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी है।
प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति पर कहा कि वो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है।
इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार देश में अगले 5 वर्ष में 50 और हवाई अड्डे विकसित करेगी। इस कार्यक्रम का समापन कल होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि खाद्यान्न भंडारण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि का सपना साकार करने की दिशा में बड़ा प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की आय में वृद्धि के साथ ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष का सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, जनसेवा के प्रति समर्पण और निरंतर सक्रियता हर जन प्रतिनिधि के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्रीमती गुप्ता ने ईश्वर से श्री बिष्ट के उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस ने साइबर थाने ने दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ये आरोपी लोगों को फर्जी मैसेज भेजकर पानी कनेक्शन काटे जाने की धमकी देकर वारदात करते थे। आरोपी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिंक फाइल भेजकर फर्जी भुगतान करवाते थे और बैंकिंग डिटेल्स पावर पाकर बैंक खातों से पैसे हस्तांतरित कर लिया करते थे। दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी इलाके से अवैध रूप से रह रहे 16 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों में 4 पुरुष, 5 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक उत्तर प्रदेश की सीमा से दिल्ली के सीमापुरी इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने आज कनॉट प्लेस में कचरे को कम करने, पुनः उपयोग करने और रिसाइकिल को बढ़ावा देने के लिए रिसाइकिल मेला शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रिसाइकिल मेला, एक्शन किट, बुकलेट और पोस्टर के भी लॉन्च किए जाने चाहिए। यह कार्यक्रम जागरूकता से कार्यवाही तक थीम के अंतर्गत शुरू की गई है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि NDMC क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण में सबसे पहला चेहरा हमारे स्वच्छता सेवकों का है, जो इस क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात मेहनत से काम करते हैं। राजधानी में आज दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम के समय तापमान में गिरावट महसूस की गई। आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट PG 2025 की 15 जून को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अधिक परीक्षा केंद्र और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के लिए इसे स्थगित किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा की संशोधित तारीखें शीघ्र ही घोषित की जाएंगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आज JEE एडवांस परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र छात्राएं वेबसाइट results25.jeeadv.ac.in पर परिणाम देख सकते हैं। JEE एडवांस परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अन्य सहभागी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन के वार्ड समिति के चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के नियमों के बराबर बनाने के लिए विधानसभा के नियमों और कार्य प्रणालियों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज नरेला स्थित राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर जमीनी स्तर पर जरूरी सुधारों के लिए दिशा निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी इलाके से में अवैध रूप से रह रहे 16 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रन ने आज कनॉट प्लेस में कचरे को कम करने, पुनः उपयोग करने और रिसाइकिल करने को बढ़ावा देने के लिए रिसाइकिल मेला शुरू किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।